कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद परिवार्जिकाचार्य अष्टोत्तरशत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद परिवार्जिकाचार्य अष्टोत्तरशत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय जय श्री श्री गौर निताय की जय जय श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय सब वेद भक्त वृंद की जय श्रील नरोत्तम श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय माध्वेन्द्रपुरी पाद आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय श्री श्री राधा रमण देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय सब वेद भक्त वृंद की जय निताय गौर हरि प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टकी हरे कृष्ण। तो श्री श्री राधा गिरधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी और श्री श्री गौर निताई के इस प्रातःकाल श्रृंगार दर्शन एवं प्रातःकालीन भागवत सत्र में उपस्थित हुए सभी भगवत प्रेमियों का स्वागत है। यह प्रभुपाद महाराज की असीम कृपा है कि पूरे विश्व में प्रातःकालीन सत्र में श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का जो दुर्लभ अवसर है उसको उन्होंने जीव जगत पर कृपा करके सुलभ कराया है। श्रीमद् भागवतम जो केवल ग्रंथ ही नहीं है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है। इसलिए वैष्णवगण ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, ग्रंथों का राजा बताते हैं। बताया गया है निम्नानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतम यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम यथा। जैसे निम्नानाम जो नीचे की तरफ बहती है उसको निम्नानाम कहते हैं, अर्थात नदियां, जैसे नदियों में श्रेष्ठ शिरोमणि श्री गंगा जी हैं, और वैसे ही जैसे देवों में अच्युत देवानाम अच्युतम यथा, देवों में अच्युत अर्थात भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं, अच्युत कहा गया है उनको। गीता में भी अर्जुन जब संबोधित करते हैं तो अच्युतम हे अच्युत मेरे रथ को ले चलिए सेनारू भयो मध्य, अच्युत कहा जाता है। वे कोई भी क्रिया करते हुए प्रतीत हों लेकिन वे हमेशा अपने श्रेष्ठ पद पर ही स्थित रहते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। चाहे वो कुछ भी करें लेकिन वे अपने हमेशा श्रेष्ठ पद पर ही रहते हैं, और वे अपने कभी वचन से च्युत नहीं होते। कैसी भी परिस्थिति हो जाए लेकिन जो उन्होंने वचन दिया है वे हमेशा उसका पालन करते हैं। कल हमने देखा कितनी परिस्थिति गंभीर थी, हिरण्यकश्यपु ने जो अपनी सुरक्षा कवच ब्रह्मा जी से ले रखा था, ऐसा बताया गया है कि अगर उसको कंप्यूटर में डालेंगे आप कि अब कोई रास्ता है उसको मारने का, तो कंप्यूटर भी ना कर देगा कि नहीं अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन उनका वचन है कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करता ही हूं, इसलिए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और साथ साथ में अपने भक्तों के वचन को भी सत्य रखने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, वे रास्ता निकाल ही लिए। ये किसी मानव के बुद्धि से नहीं निकल सकता, ये मानव का बुद्धि चल ही नहीं सकता है। ये तो ये रास्ता निकला इसलिए हम लोग कहते हैं हाँ ये रास्ता है, लेकिन अगर भगवान ने ये रास्ता नहीं निकाला होता तो हमारे बुद्धि से ये रास्ता नहीं निकल सकता। हिरण्यकश्यप कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत तेज बुद्धिमान था, बहुत तेज बुद्धि था उसका है? और उसने बड़ा विचार कर करके एक एक वस्तु को मांग लिया था। वो विचार करके ब्रह्मा जी से मांग रहा था है? हाँ होता है कभी कभी व्यक्ति आकाश में भी विमान में एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है तुरंत, नहीं 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 सुनो 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 आकाश में भी ना मरो। कभी कभी जल में नैया डूब जाती है, आदमी डूब कर मर जाता है, इतने लोग मर गए। तो सुनो और सुनो क्या जल में भी ना मरूं। फिर उसको याद आया कि कभी कभी ये विष्णु है कोई और रूप लेकर आ जाता है, पशु रूप में भी आकर मांस, देखिए देखिए पशु से भी नहीं नर से भी नहीं, ऐसा रात को नहीं दिन को नहीं, घर के बाहर आ व्यक्ति जाता है कहीं पर चर्च गेट गया है तो घर पे लौटता ही नहीं है, तो बोला घर के बाहर भी ना मरूं, और कभी घर के अंदर सोया सोया ही सोया रह जाता है, बोला घर के अंदर भी नहीं, पूरा अपना दिमाग चलायमान करके बिल्कुल सब सिक्योरिटी ले लिया था विचार करके। लेकिन अच्युतम वे भगवान जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए वचन दिए हुए हैं, कौन तय प्रति जाने ही नाम भक्त हैं, अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा करने के लिए और प्रह्लाद महाराज के वचन को सत्य करने के लिए, और साथ साथ में ब्रह्मा जी भी उनके भक्त हैं। ये वास्तव में ये अद्भुत लीला भगवान ही कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य किया और ब्रह्मा जी के जो वचन थे उनको भी एज इट इज रखते हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी उनके भक्त हैं, नहीं तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्तों के वचन को, तो ब्रह्मा जी के जो भी वचन दिए थे तो उनको भी एज इट इज सत्य रखा, उसको भी खंडित नहीं किया। ये भगवान का बहुत ऊंचा ट्रिक है, भगवान अपने भक्तों के वचनों को हमेशा ऐसा ही रखते हैं। कई बार हम देखते हैं कहीं ब्राह्मणों ने वचन दे दिया, कहीं शिव जी ने वचन दे दिया, तो उनके वचनों को भी भगवान खंडित नहीं करते हैं। और उनके वचनों को भी एज इट इज रखते हुए प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा कर दी, तो वे हमेशा अपने वचन से अपने पद पर हमेशा स्थित रहते हैं, अपने वचन पर कायम रहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो। इसलिए उनको कहा गया देवानाम अच्युतम यथा अच्युत, भगवान कृष्ण जैसे देवों में श्रेष्ठ हैं और हमेशा वे अपने श्रेष्ठ पद पर ही स्थित रहते हैं, तो जैसे देवों में कृष्ण श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, और वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे वैष्णवों में भगवान शिव जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, और उसी प्रकार पुराणानाम इदम यथा, ऐसे ही पुराणों में यह श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है, इसलिए इसको ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। इसकी रचना भी बड़ी अद्भुत प्रसंग है, अगर आप सुनेंगे तो वेद व्यास ने सभी सर्वप्रथम उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में लोगों का स्मृति बिल्कुल नहीं रहेगा, तो जीव जगत के कल्याण के लिए, पूरे जगत के जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने वेद का ठीक ठीक व्यवस्था किया। पहले एक ही यजुर्वेद था, उसको चार भागों में विभाजित किया है, यजुर्वेद को फिर सामवेद, अथर्वेद, ऋग्वेद, इस प्रकार चार, और चार वेदों को चार आचार्यों को दे दिया। उसके बाद 17 पुराण की भी रचना की। 17 पुराण की रचना करने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो वेद है ये तो वास्तव में उन्नत लोगों के लिए है, लेकिन सामान्यतः शूद्र स्त्री तथा वैश्य, सामान्यतः शूद्र लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, और साधारण द्विज बंधु नाम लिखा, द्विज बंधु मतलब ऐसे लोग जो सुसंस्कृत नहीं है, उनका द्विज संस्कार नहीं, कोई संस्कार नहीं होता है, जैसे गर्भाधान संस्कार होता है, नाम संस्कार होता है, ऐसे किसी संस्कारों से जो युक्त नहीं है उनको द्विज बंधु नाम कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी जो संस्कृत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी महाभारत का रचना किया, क्योंकि साधारणतः लोगों का पॉलिटिक्स में, स्टोरियों में, इतिहास में रुचि रहता है, स्त्रियों का विशेषकर कहानियों में रुचि रहती, तो इस प्रकार का वो रचना किया, उसको पंचम वेद कहते हैं, और उसमें श्रीमद् भगवद गीता का अवतरण होने के कारण वो पंचम वेद कहलाया। तो इस प्रकार सभी के कल्याण के लिए, सर्व आत्मना के नाम अपि, सभी जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने इस प्रकार वेद का व्यवस्था किया, ज्ञान का व्यवस्था किया, लेकिन उसके बाद भी न तुष्यदम हृदयम ततः, उनका हृदय संतुष्टि नहीं हुई, उनको संतुष्टि नहीं हुई, उनको रिक्तता का अनुभव हुआ कि कुछ कमी है। प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में लिखते हैं कि वेदव्यास महाराज पूर्ण ऐसे पूर्ण ज्ञानी थे, उनको सब पता था, और उनको रिक्तता का अनुभव होना ये वास्तव में कृष्ण की कृपा थी उन पर, इसलिए उनको रिक्तता का अनुभव हुआ। नहीं तो देखिए, इस जगत में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई पुराण पढ़ लिया तो बस वो उसमें ही, वो उसका ही गान गाएगा, उसको अनुभव नहीं होता। जब तक भगवत कृपा, कृष्ण का कृपा ना हो तब तक उसको अनुभव नहीं हो सकता कि अभी तो कुछ कमी है, लेकिन वेद व्यास जी पर कृष्ण का कृपा था इसलिए उनको अनुभव हुआ कि नहीं, कुछ कमी है, जरूर कमी है। और संतुष्ट नहीं हो रहे थे, तब उस समय उन्होंने अपने गुरु नारद जी का स्मरण किया। और स्मरण करके उन्होंने जब स्मरण किया और विचार करने लगे कि हो न हो, उनको पता चल गया हो न हो, मैंने उस उन भगवान की महिमामय शुद्ध निर्मल लीलाओं का वर्णन नहीं किया जो प्रिय परमहंसा नाम, जो परमहंसों को प्रिय है और अच्युतम प्रिय और अच्युत को भी प्रिय है। ये भागवतम की जो कथाएं हैं ये भगवान को भी प्रिय हैं और वैष्णवों को तो है ही, लेकिन उसका मैंने संकलन नहीं किया, निरूपण नहीं किया। शायद तो अपनी शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने गुरु का स्मरण किया, नारद जी वहां प्रकट हुए और नारद जी ने पहले थोड़ा ठपका भी दिया, तुमने वेदों का जो रचना किया है, व्यवस्था किया है, वेदों में ज्यादातर कर्मकांड विभाग ज्यादा है और लोग उसी विभाग से आकर्षित होते हैं, है? विषया त्रिवेदा विषया, जो कर्मकांड, आप ये यज्ञ करो आपसे ये प्राप्ति होगा, इस यज्ञ को करो स्वर्ग प्राप्त होगा, इस यज्ञ को करो धन प्राप्ति होगा, इस प्रकार ये कर्मकांड विभाग है उससे जीव। तो नारद जी ने कहा कि जीव का पहले ही भोगों में ज्यादा आसक्ति है, भोगों में पहले ही हमारा रुचि है, भोगों के लिए किसी को कुछ किसी जीव को बताने की जरूरत नहीं है, भोगों में पहले से उसका रुचि है और तुमने उसको और दे दिया, उस भोगों को और भोगने के लिए क्या क्या मसा, क्या करेंगे तो कौन सा भोग प्राप्त होगा, क्या करेंगे तो स्वर्ग प्राप्त, ये और दे दिया, तो ये आपने तो ये ठीक नहीं किया और इसीलिए आप भी संतुष्ट नहीं है और इसके अनुयायी भी संतुष्ट नहीं होंगे। आपने जो भी रचना की है उसमें भगवान की अलौकिक और निर्मल लीलाओं का पूरा पूरा ठीक ठीक वर्णन आपने किया ही नहीं, और जो ग्रंथ जो रचना भगवान कृष्ण की शुद्ध अलौकिक दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं करता वास्तव में वो रचना व्यर्थ है। और इस प्रकार नारद जी ने अपने प्रत्यक्ष अपने जीवन का उदाहरण दिया और उसके बाद नारद जी चले गए। तब नारद जी जब चले गए तब सौनक इत्यादि ऋषियों ने पूछा कि उनके चले जाने के बाद वेदव्यास जी ने क्या किया, गुरु महाराज जू चले गए तो ब्रह्मचारियों ने क्या किया, ब्रह्मचारी आश्रम में जाकर सो गए, क्या किया? तो जब नारद जी चले गए तो वेदव्यास जी ने क्या किया तब बता देंगे। वेदव्यास जी को कहकर गए कि समाधि के द्वारा तुम इसका ध्यान करके देखो। तब उस बद्रिका आश्रम में वेदव्यास महाराज ने समाधि लगाया और समाधि में भगवत कृपा से निराकार ज्योति का दर्शन नहीं किया, वो इतने निचले स्तर के नहीं थे। जब समाधि लगाया तो उन्होंने देखा पहले भगवान की माया को, बहिरंगा शक्ति, और देखा कि उस बहिरंगा शक्ति के अंडर में अधीन जीव है जिसके कारण वो भय शोक मोह में डूबा हुआ है। इसका कारण क्या है? बहिरंग माया शक्ति के अधीन, और यह माया शक्ति बहिरंगा शक्ति कृष्ण के अधीन है। तब कृष्ण, जब तक जीव का कृष्ण के प्रति उसका भक्ति उत्पन्न नहीं होगा तब तक जीव इस माया से मुक्त नहीं हो सकता, और जब तक माया से मुक्त नहीं हो सकता तब तक वह भय शोक मोह से वंचित नहीं रह सकता। ये वेदव्यास महाराज ने देखा तब वो निर्णय पर पहुंच गए। इसलिए तब उन्होंने कहा, लिखा गया है कि यश्य वे श्रीय माणा नाम कृष्ण परम पुरुष, यश्य वे श्रीय माणा याम, यश्य वे मतलब श्रीमद् भागवतम, उन भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने मात्र से कृष्ण परम पुरुष उस कृष्ण परम पुरुष में उनका भक्तिर उद्दते पुंसा, भक्तिर उद्दत हृदय में पड़ा हुआ जो भक्ति है, वो जब कृष्ण की शुद्ध लीलाओं का श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, तो जीवों के हृदय में पड़ा हुआ भक्ति उद्दते, उसका अंकुर फूटेगा, भक्ति प्रकट हो जाएगा। और तब क्या होगा, पुंस शोक मोह भया पहा, तब जीवों का भय शोक और मोह भाग जाएगा। प्रश्न होता है कि हम लोग तो इतना दिन से सुनते हैं, हमारा तो कोई शोक मोह भय दूर नहीं होता है, हैं? हम तो कल देखा नरसिंह चतुर्दशी था, लेकिन कोई भक्त हैं तो ना भगवान के अभिषेक में है, ना मंगला आरती में है, तो क्यों नहीं है, अभी भी भय शोक मोह में है कि हम अगर छोड़कर जाएंगे तो हमारा कुछ घाटा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, ये भय है और शोक भी है, हैं? तो क्यों नहीं है, ये प्रश्न होता है कि जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण तो करते हैं, लेकिन अभी तक हमारा भय शोक और मोह है, अभी तक इतना आसक्ति है विषयों में, धन में, उसमें उसमें, विषयों में आसक्ति क्यों है इतना श्रवण करने के बाद भी, तो इसका ये प्रश्न उठाया गया था जब धुंधकारी के लिए भागवत कथा हुई थी और धुंधकारी का उद्धार हो गया, वो विष्णु लोक से विमान आया और उसमें बैठकर धुंधकारी चला गया, लेकिन दूसरे श्रोता थे वो बोले अरे तो हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, हमने भी तो भागवत को सुना है। तब बताया कि उसने सुना बड़ा निष्ठा से, श्रद्धा से, और उसको सुन के उसने उसका मनन किया, उसका चिंतन किया, लेकिन हम लोग सुनते हैं और बाहर निकल के ही दुकान की बात चालू कर देते हैं, भागवत का मनन नहीं करते हैं, यहां से जैसे क्लास, कब क्लास पूरा हो, कब प्रसाद में जाए, बस वो चिंतन होने लगता है पूरे होते होते। तो कभी कभी हम देखते हैं अभी तो पूरा हुआ है, अभी श्रोता को कुछ हमने धन्यवाद भी नहीं दिया और लोग तो उठ उठ कर भागने लगते हैं, लाइन लंबा हो जाएगा। कहने का अर्थ है हम लोग जो श्रवण करते हैं उस पर मनन नहीं करते हैं, इसलिए उसका पूरा पूरा लाभ हमको नहीं मिलता है। तो भागवतम श्रवण का विधि ये कि जब हम सुनते हैं तो उसको मनन करना चाहिए कि आज जो हमने सुना भागवत से वास्तव में क्या क्या था, उसके विषय में हमारे मन में क्या शंकाएं हैं और क्या क्या भागवत में बताया गया है, उसका मनन करना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए, मन में पूरा दिन उसको स्मरण करना चाहिए, तब हम उसका पूरा पूरा लाभ लेंगे। हम तो इधर ही छोड़कर चले जाते हैं, कभी कभी कहते हैं कि भागवतम कृष्ण लीला को अगर एक बार भी कोई सुन लेता है तो कृष्ण है, ये प्रश्न उठाया, सुखदेव गोस्वामी तो परमहंस थे, उनको ये भागवत पढ़ने का आत्मा राम च मुनयो उरुक्रमे निरग्रंथ, ये आत्मा राम जो अपने आत्मा में रमण करने वाले ऐसे ब्रह्मवादियों को भी, आत्मा राम मुनियों को भी आकर्षित कर लेता है श्रीमद् भागवतम, लेकिन हमारा मन आकर्षित नहीं, मन कैसे आकर्षित, हम मन को ही उधर दुकान में रखकर आएंगे, घर पे रखकर आएंगे तो कैसे आकर्षित करेगा, शरीर यहां बैठा है, मन चिंता कहीं और कर रहा है। तो भागवतम को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए, तब हम इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो आइए अब हम श्रीमद् भागवतम के आज के प्रसंग पर आते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9, नौवां स्कंद है, आप सभी जानते हैं नौवां स्कंद में विशेषकर सूर्य वंश की वंशावली का वर्णन है और जिसमें भगवान श्री राम की दिव्य लीलाओं का भी उल्लेख हुआ है, तो उसी वंश का यहां पर वर्णन चल रहा है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 और अध्याय है 6। सौबरी मुनि का पतन, इस अध्याय का नाम है और श्लोक संख्या है 3। तो इसमें आए हुए शब्दों का उच्चारण करेंगे पहले। एते क्षेत्र प्रसूता वै पुना तू अंगिरसा स्मृताः रथीतराणां प्रचरा क्षेत्र उपेता द्विजातीय एते क्षेत्र प्रसूता वै पुनस्त्वांगिरसा स्मृता रथीतराणां प्रवराः क्षेत्रोपेता द्विजातय एते क्षेत्र प्रसूता वै पुनस्त्वांगिरसा स्मृता रथीतराणां प्रवरा क्षेत्रोपेता द्विजातय एते क्षेत्र प्रसूता वै पुनस्त्वांगिरसा स्मृता एते रथीतराणां प्रवराः क्षेत्रोपेता द्विजातय क्षेत्र प्रसूता वै क्षेत्रोपेता द्विजातय माता जी
एते क्षेत्र प्रसूता क्षेत्र प्रसूता रे इतराणां प्रवरा क्षेत्रोपेता द्विजातीय
एते अंगिरा द्वारा पुत्र क्षेत्र प्रसूता रथितर की संतान बने और उसके कुल के कहलाए। वे निसंदेह पुनः फिर तू लेकिन अंगिरसा अंगिरा के वंशज स्मृता कहलाए। रथितराणाम रथितर के सारे पुत्रों का प्रवराह प्रमुख क्षेत्र उपेता क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण द्विजातीय ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का मिश्रण होकर इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। रथितर की पत्नी से जन्म लेने के कारण ये सारे पुत्र रथितर के वंशज कहलाए थे, किंतु अंगिरा के वीर्य से उत्पन्न होने के कारण वे अंगिरा के भी वंशज कहलाए। रथितर की संतानों में से ये पुत्र अत्यंत प्रसिद्ध थे, क्योंकि अपने जन्म के कारण ये ब्राह्मण समझे जाते थे। तात्पर्य बहुत छोटा तात्पर्य दिया है मात्र विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने द्विजातीय शब्द का अर्थ मिश्र जाति दिया है, जो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के मिश्रण का सूचक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सौपदान्ति। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्त धाम वृंदावनम, आराध्य रम्य काचिता उपासना व्रज वधू वर्गेण यो कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत इदम तत्रादरो न पर। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में या कोई भी कथा इतिहास जब हम श्रवण करते हैं, तो अगर लिंक से जब सुना जाता है तब जो श्रवण करते हैं उसका अर्थ समझ में आता है, है ना। जैसे अब जो ये प्रसंग है, अगर कोई नया व्यक्ति ऐसा श्रवण करेगा तो मन में संशय पैदा होता है, अगर उसका पिछला इतिहास मालूम नहीं है तो। जैसे इस प्रसंग में दूसरे और तीसरे श्लोक में पहले श्लोक से यही बताया गया है कि रथी तर नाम के जो राजा हुए उनको कोई संतान नहीं हुआ, तब अंगिरा ऋषि से प्रार्थना करके उन्होंने अपनी पत्नी से अंगिरा जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न कराए। प्रश्न होता है ऐसा क्यों किया, समझो पुत्र नहीं है तो क्या तकलीफ है। और इसमें कई हमारे मन में शंकाएं भी हो सकती हैं अगर ध्यान पूर्वक इसको न सुना जाए तो। रथी तर जो थे उनकी पत्नी से अंगिरा जी ने अपने वीर्य से पुत्र उत्पन्न किए और इस राजा ने उनको प्रार्थना किया था इसके लिए कि पुत्र उत्पन्न कीजिए, तब पुत्र उत्पन्न किए। वही बात इस यहां बताया गया है। एते क्षेत्र प्रसूता वय, क्षेत्र प्रसूता, क्षेत्र मतलब रथी की जो पत्नी थी उसके गर्भ से, क्षेत्र प्रसूता मतलब पुत्र उत्पन्न किए। किसने, अंगिरा ने, पति हैं रथी तरह और पुत्र उत्पन्न किया अंगिरा ने। एक बार क्या हुआ, एक स्त्री को पुत्र नहीं हो रहा था तो वो पति के साथ भगवान के मंदिर आई, तो भगवान से वो पत्नी प्रार्थना करने लगी कि हमको एक पुत्र दे दो, तो उसका पति क्रोधित हो गया, शादी मुझसे करती और पुत्र भगवान से मांगती है, वो कुपित हो गया, तो पति कुपित हो जाए। लेकिन यहां पर पति ने ही प्रार्थना किया कि आप पुत्र उत्पन्न कीजिए। तो इसका पहले कि क्यों उनसे पुत्र उत्पन्न कराया, इसलिए मैं कहता हूं कि पूर्व अगर कथा सुनी है, जैसा मैंने कहा कि इस अध्याय में सूर्य वंश की वंशावली का वर्णन हो रहा है। इस जगत में दो कुल जो हैं बड़े महान और पवित्र हुए, सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये दोनों महान कुल हैं और इसमें महान राजा हुए। महान का अर्थ है महात्मा, और महान तो बहुत, महान का अर्थ तो ठीक है, महान तो बहुत लोग होते हैं, महात्मा भी बहुत होते हैं, हैं? लेकिन यहां पर महान का अर्थ है जैसा गीता में भगवान कहते हैं, स महात्मा सुदुर्लभ, स महात्मा, स महात्मा, ऐसा महात्मा, वो महात्मा, महात्मा बहुत है, महात्मा गांधी भी हैं और भी कई महात्मा हैं, लेकिन स महात्मा, भगवान देखिए कितना स्पष्ट कहते, स ऐसा महात्मा दुर्लभ है, कैसा, वासुदेवम सर्वम इति। महात्मा संसार भरा पड़ा है, पृथ्वी में बहुत महात्मा है, लेकिन स महात्मा, ऐसा महात्मा, ऐसा महान व्यक्ति, कैसा, वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ भगवान कृष्ण ही हैं, या यह सब कुछ भगवान कृष्ण का ही है, या कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, ऐसा मानने वाला, ऐसा जानने वाला सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, बाकी तो महात्मा तो बहुत है, सब महात्मा सु, तो ऐसा ये वंश है, महान वंश है, जिस वंश में ऐसे ऐसे उनके वंशज हुए जिन्होंने वासुदेवम सर्वमिति, जैसे महाराज अम्बरीश, इसके पूर्व हमने महाराज अम्बरीश का चरित्र सुना, महाराज अम्बरीश ऐसे थे, राजा थे सारे पृथ्वी के, लेकिन अपने सभी इंद्रियों से, मन से, इंद्रियों से पूर्णतया भगवान कृष्ण की ही सेवा करे, सवे मना पुंसप कृष्ण पदारविंदयो, उनके सब इंद्रियां मन पूर्णतया, वे अपने हाथ से मंदिर में पोता मारते थे, पांव से चलकर मंदिर जाते थे, तीर्थ स्थानों में जाते थे। इस प्रकार अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। क्यों? वासुदेवम सर्वम, क्योंकि सब कुछ कृष्ण ही हैं, हमारे प्राण धन कृष्ण ही हैं। तो ऐसे ऐसे इस वंश में महान राजा हुए और उसी वंश में भगवान राम हुए, और भी इनके कुल के रघु हुए और सत्यवादी हरिचंद्र हुए, ऐसे कई महान राजा हुए। तो इस वंश में आते आते महाराज अम्बरीश के बाद, जो नहीं सुने उन सुन ले, महाराज अम्बरीश के बाद अम्बरीश के तीन पुत्र हुए, विश्वरूप, केतुमान और शंभु। उसमें से विरूप का पुत्र, विरूप केतुमान और शंभु, सॉरी विश्वरूप नहीं, विरूप का पुत्र हुए पृषदच्च और उनके पुत्र हुए रथितर। ये उनकी वंशावली, अम्बरीश महाराज की वंशावली है। लेकिन रथितर को कोई संतान नहीं हुआ, क्योंकि इतना पवित्र कुल है, हैं? इतना महान कुल है, और इस कुल में जितने भी राजा हुए बड़े धार्मिक हुए, जिसके राज्य के चलते प्रजा का भी बहुत मंगल हुआ, हैं? ऐसे राज घराने में, ऐसे पवित्र कुल में अगर संतान ना हो तो ये वास्तव में प्रजा के लिए भी अमंगल का कारण बन सकता है, और ऐसा वंश आगे चलना चाहिए, ये उद्देश्य। जैसे हम भागवतम के चौथे स्कंद में पढ़ते हैं राजा वैन, हालांकि वैन जो था वो दुष्ट था, असुर प्रवृत्ति का था, लेकिन ब्राह्मणों ने जब श्राप देकर उसको मृत्यु का श्राप दे दिया तो वो मर गया। राजा वैन सिंहासन पर खड़ा खड़ा नीचे गिर गया श्राप देते ही ब्राह्मणों के। लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों ने विचार किया कि ओहो, ये तो बहुत ही पवित्र कुल है। कैसे? कि इस कुल में ध्रुव महाराज जैसे महान भक्त आए हैं, उनका ये कुल है, तो ये कुल तो आगे बढ़ना चाहिए। भले ये एक राजा ऐसा हुआ, लेकिन इस कुल का वंश चलना चाहिए। तब उन ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति से उस राजा वैन के भुजाओं को मथा, और मथकर एक भुजा से महाराज प्रथु प्रकट हुए और एक भुजा से प्राची, प्राची नाम था हैं? महाराज प्रथु की पत्नी का प्राची, अर्ची, अर्ची सॉरी अर्ची, अर्ची प्रकट हुई। और इस प्रकार प्रथु महाराज ने फिर उस वंश को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार कई हमारे ऐसे इतिहास में वंश हुए जिनका वंश का आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक था। इसलिए किसी विशेष कारण को लेकर विशेष विधि के द्वारा इस प्रकार पुत्र उत्पन्न किए गए, ऐसा इतिहास हमको मिलता है। प्रखर इतिहास है पांडवों का, पांडव वंश है। पांडव वंश में शांतनु का शादी तो गंगा देवी से हुआ था पहले, और लेकिन उनका जो विवाह हुआ था वो आर्गुमेंट विवाह था, शर्त था। उस विवाह में गंगा देवी ने शर्त रखा था कि मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मैं जो कुछ भी करूंगी उसमें आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे। ठीक है, और इस आर्गुमेंट में शादी हुआ था है? तो हुआ क्या कि महाराज शांतनु के गंगा जी के सात पुत्र जो हुए, तो एक एक करके सातों पुत्रों को, एक 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 पुत्र सात हुए, तो सातों को उसने ले जाकर जन्म लेते ही गंगा में डाल दिया। अब वो चाहते थे कि क्या करूं क्या करूं शांतनु, लेकिन अब बंधे हुए हैं। जब आठवें पुत्र देवव्रत हुए और उनको डालने के लिए जब गंगा जी जा रही थी, तब उनसे रहा नहीं गया और उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने पूछ लिया। तब उनको उत्तर दे के गंगा देवी गंगा में समा गई और देवव्रत को उनको दे दिया। लेकिन उसके बाद जब शांतनु को कोई पत्नी नहीं थी, और एक बार उनका उन्होंने सत्यव्रति को देखा था, पहले इसका नाम मत्स्यगंधा था। ये बड़े बड़े इतिहास हैं। ये वसु की पुत्री थी, मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन इनके शरीर से मछली का गंध आता था, लेकिन पराशर मुनि ने हैं? पराशर मुनि ने ऐसे समय, वो एक समय बहुत दिव्य था, वो समय ऐसा लिखा गया है भागवतम में कि अति व्यापन समय था। अति व्यापन, अति व्यापन समझते हैं, युग का अति व्यापन हो रहा था। नहीं कोई समझता अति व्यापन? ये एक बार युग का अति व्यापन हुआ इसी 28वीं, इस चक्र युग के 28वें चक्र में युग का अति व्यापन हुआ। अति व्यापन का द्वापर पर त्रेता का अति व्यापन हुआ था, मतलब द्वापर को पीछे धकेल दिया और त्रेता पहले आ गया, इसको अति व्यापन कहते हैं। ये जो इस युग में, ऐसे त्रेता का अर्थ तीसरा होता है ना, और द्वापर का दूसरा, लेकिन इस 28वें चक्र में क्या हुआ, त्रेता पहले आ गया और द्वापर बाद में आया। तो ये अति व्यापन इस समय में, और बहुत समय अनुकूल था उस समय में, पराशर मुनि का भेंट हुआ था इस कन्या से, और पराशर मुनि ने भी उससे एक पुत्र उत्पन्न किया था जो वेद व्यास हुए हैं। तो वो सत्यवती को जब महाराज शांतनु ने देखा तो वो उनके प्रति वो बहुत सुंदरी थी, आसक्त हो गए। लेकिन जब शादी के लिए प्रस्ताव रखा गया तो वसु ने शर्त रखी कि इसका ही पुत्र राजा बनेगा, आपके अगली रानी का पुत्र है वो नहीं, तो ही मैं शादी करा सकता हूं। तो शांतनु ये अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ, ये तो राजकुल में होता है, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता, तो वो धर्म संकट में पड़ गए और चिंता में रहने लगे। तब ये देवव्रत ने चिंता का कारण पूछा और इसका निवारण किया अपने पिता के लिए। ऐसे पहले कई पुत्र हुए जो अपने पिता के लिए अपने जीवन का न्योछावर किए, ये होता है पिता पुत्र का संबंध। तब उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं विवाह भी नहीं करूंगा और राज्य सिंहासन भी हासिल नहीं करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं राज्य सिंहासन से हमेशा बंधा रहूंगा, जो भी राजा सिंहासन पर बैठेगा मैं उसके पक्ष में रहूंगा। ये प्रतिज्ञा किया था पितामह भीष्म ने। हाँ, कई लोग प्रश्न करते हैं ऐसा पितामह ने क्यों किया, उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया था। उन्होंने प्रश्न किया, आज ये राजा नहीं बैठेगा, कल इसका पुत्र बैठ गया तो बोला मैं शादी नहीं करूंगा, और तुम शासन के विरुद्ध होगे लड़कर ले लिया तो बोला मैं उसके पक्ष में रहूंगा, कभी उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा किया और फिर सत्यवती के साथ महाराज शांतनु का विवाह हुआ। उनके दो पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रगद, लेकिन अंततः उनको कोई संतान नहीं हुआ। यही जो राजा रथितर का स्थिति, ऐसा ही स्थिति उनका। चित्रगद तो एक तो युद्ध में मारे गए थे, और जो विचित्र वीर या चित्रगद एक जन उसमें से मारा गया था, और एक के ये दो पत्नियां थी। हालांकि पितामह भीष्म उठाकर लाए थे काशी नरेश की तीन कन्याओं को, एक कन्या तो दूसरा बहुत प्रसंग है तो चली गई थी, बाद में वो शिखंडी बनी, लेकिन ये दो पत्नियां थी अंबिका और अंबालिका, अंबा और अंबालिका, ये इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। तब सत्यवती बहुत चिंतित हुई कि ये जो वंश है ये आगे चलना चाहिए, ये भरत कुल का वंश है, वैसे ये चंद्रवंश में आता है, तो ये कुल आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जाकर अपने प्रथम पुत्र वेदव्यास जी से प्रार्थना किया, और उन दोनों रानी और उनकी दासी तीनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कराए इस वंश को आगे बढ़ाने की। यही स्थिति, ऐसा मैं कह गया ऐसा इतिहास है। लेकिन कभी कभी हम लोग ध्यान से अगर नहीं सुनते हैं तो शंका होता है, ये कोई विशेष सुख की बात नहीं है या शरीर भोग की बात नहीं है, एक बात। दूसरा बात, यहां पर कहा गया है दूसरे श्लोक में, जनया मास, जनया मास, जनयाम आस, जनयाम आस, उसकी पत्नी से पुत्र उत्पन्न किए, पुत्र उत्पन्न हुए नहीं। ये शब्दों का बड़ा ध्यान रखना, पुत्र उत्पन्न होना अलग बात है और पुत्र उत्पन्न करना अलग बात है। हमारे जो होते हैं साधारणतया पुत्र उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न करते नहीं है। यहां पर पुत्र उत्पन्न किए गए, ये शब्दों का फेर है। भागवतम के प्रथम स्कंद में आप पढ़ेंगे तो महाराज परीक्षित का जब चरित्र आता है तो वहां पर ये लिखा गया जनया मास। महाराज परीक्षित ने अपनी पत्नी से चार पुत्र उत्पन्न किए, चार पुत्र हुए नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को, होना मतलब स्त्री संग करते हैं और हो जाता है तो वो होना होता है, और उत्पन्न करना मतलब किसी विशेष विधि से विशेष कारण से उसको उत्पन्न किया जाता है। ये होना और उत्पन्न करना में फर्क है। जनया मास मतलब पुत्र उत्पन्न किए, तो ये बहुत ही दिव्य विधि के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। अंगिरा जी के वीर्य को उनकी पत्नी के कुक्ष में स्थापित किया गया। कभी कभी हमें कौन सा विधि होगा, किस प्रकार स्थापित किया होगा, ऐसा प्रश्न होता है। लेकिन आज विज्ञान के इतने आगे बढ़ने से हमको शास्त्र समझने में भी थोड़ा सहज होने लगा है। आज का विज्ञान हम देखते हैं किसी का भी वीर्य किसी भी स्त्री के कोख में स्थापित कर देते हैं ये साइंटिस्टिक लोग। अरे स्त्री के गर्भ की बात छोड़िए, किसी दूसरे पात्र में भी, जैसे आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो वीर्य उसमें रखा गया। जैसे गुंबज ऋषि का जन्म हुआ था, किसी ऋषि का वो वीर्य था, किसका वीर्य था जो एक घड़े में रखा गया था, और फिर उस घड़े से इन ऋषि का जन्म हुआ, इसलिए इनको कुंभज कहते हैं। कुंभ मतलब घड़ा, अज मतलब जन्म, जिनका जन्म घड़े से हुआ, उस घड़े में किसी ऋषि का वीर्य था वो रखा गया था। द्रोणाचार्य, वो द्रोणाचार्य का जन्म दूसरे किसी ऋषि से हुआ है, वो तो एक अप्सरा थी जो वो गंगा में स्नान कर रहे थे। ये ऋषि कौन से, दधीची के कौन थे, कोई ऋषि थे गंगा में स्नान कर रहे थे और वो अप्सरा भी वहां आई थी स्नान करने, उस समय उनका वीर्य स्खलित हुआ था और उसको एक द्रोण में रखा गया था, और उससे जो जन्म हुआ वो द्रोणाचार्य है, ये द्रोणाचार्य हुए। लेकिन ये तो अंगिरा जो कुंभज ऋषि है ये किसी दूसरे का वीर्य था। तो इस प्रकार वीर्य को रखा जा सकता है ना। आज धर्म को समझने के लिए आप विज्ञान का सहायता ले सकते हैं तो समझ में आ जाता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं तो हम गलत संभावना लगा देंगे। इसलिए कहा गया है कि विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है और धर्म के बिना विज्ञान अंधा है। आप समझ रहे हैं इस बात को है? और जब अंधा और लंगड़ा दोनों मिल गए तो पूरे विश्व में हल्ला मचा दिया है? विदेशी लोग अंधे थे और हम लोग लंगड़े थे और दोनों मिल गए तो पूरे विश्व में हरे कृष्णा 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 हरे 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 रूपा जी इस बात को कहते हैं। हाँ, विज्ञान कैसे धर्म के बिना अंधा है। जैसे जो वैज्ञानिक था जिसने इस अणु का पितामह गॉडफादर कहा जाता है, अणु बॉम्ब जिसने बनाया था, क्या नाम था उसका, किसको मालूम है नाम वैज्ञानिक नहीं नील, वो दूसरा वैज्ञानिक था वो वैज्ञानिक था, उसने जब आविष्कार किया परमाणु का और उसमें इतना शक्ति देखा तो वो भी आश्चर्य में पड़ गया। अरे बाप रे, इस परमाणु मतलब अणु से भी छोटा परमाणु, इन कणों को मिलाकर उसने ये बॉम्ब बनाया, और वो बॉम्ब जब फोड़ा तो उसमें इतना शक्ति कि वो विश्व को पूरे देश को विनाश कर सकता है। तो वो विचार करने लगा कि ये इसमें इतना पावर कहां से आया, इतना इतना छोटा सा कण में, इतना छोटा कण इसमें इतना पावर, वो जान नहीं पाया। तो इसके पीछे बहुत संशोधन किया उसने, उसके बहुत टुकड़े किए और बहुत देखा क्या है क्या है। उसने जब एक छोटे से परमाणु को देखा तो उस परमाणु में वाइब्रेट हो रहा था, फिर वो इसमें पड़ गया कि अरे इसमें ये कुछ पावर है, ये पावर इसमें कहां से आया। तो वो इस विषय में अंधा था, विज्ञान अंधा है। तो फिर उसको जब वो ब्रह्म सहित का श्लोक है ना, अंडा अंतरश्च चया परमाणु अंतरस्ता है, भगवान ने अपनी शक्ति द्वारा या परमात्मा के रूप में इस ब्रह्मांड में भी प्रवेश किया, ब्रह्मांड में भी प्रवेश किया और एक एक अणु में परमाणु में भी प्रवेश किया, और वो ही परमाणु में जो शक्ति है वो भगवान का शक्ति है, पावर, पावर के रूप में वो भगवान है। तब वो उसको बताया गया, तब वो कहा हां ये सत्य है। तो धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। हम लोग लंगड़े हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, किसी का वीर्य किसी के कुक्षी में कैसे, लेकिन आज विज्ञान से हम देख सकते हैं हां हो सकता है, किसी का भी वीर्य किसी के गर्भ में रखा जा सकता है। तो इस विधि से कई विधियां हैं हमारे इतिहास में, आप इतिहास पढ़ेंगे तो कई विधियां हैं कि किस प्रकार रखा जाता था। प्रभु जी कहां तक चलाना है, है? दस पौने, नहीं तो फिर इस प्रसंग को ले, इतना कोई है तो ये प्रसंग तो और लंबा खींचा जा सकता है कि वीर्य किस प्रकार स्थापित। आप जानते हैं शिव जी के वीर्य को अंजनी के कर्ण में स्थापित किया गया था जिससे हनुमान जी हुए और पवन के द्वारा, लेकिन इस प्रसंग को हम यहाँ पर थोड़ा विराम देते हैं। इतना ही है कि इस जो ये वंश था ये बहुत ऊंचा वंश था और इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए महान ऋषि अंगिराज से रथितर ने पुत्र उत्पन्न कराए। वे पुत्र रथितर के भी पुत्र कहलाए और अंगिरा के पुत्र कहलाए, द्विजातीय। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा कि मिश्रण जाति क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के मिलाप से ये पुत्र जो संतान उत्पन्न हुई तो इसको मिश्र जातीय कहा जाता है, वो ब्राह्मण भी कहलाए क्योंकि अंगिरा जी ब्राह्मण हैं, रथितर क्षत्रिय हैं। तो इस प्रकार द्विजातीय ये संतान उत्पन्न हुई जो आगे इस प्रकार यह सूर्यवंश आगे चला और आगे इश्वाकु का वंश और इसका वर्णन आएगा। लेकिन विशेषकर आज का दिन बहुत ही विशेष है, इस पर अभी हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे। आप सब जानते होंगे आज का एक तो कृष्ण वाटर फॉलो है, क्या है, जल विहार क्रीड़ा है, और उसके साथ साथ कई हमारे वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव दिन और तिरुभाव दिन, और साथ साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राधा रमण देव का आज प्रागट्य दिन है। राधा रमण देव की, गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु की। तो परमेश्वर दास ठाकुर इनका आज आविर्भाव तिथि है। माधवेंद्रपुरी पाद जिनका कथा आप पिछले दो रविवार से सुन रहे हैं, हैं? माधवेंद्रपुरी पाद चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु माधवेंद्रपुरी पाद का भी आज आविर्भाव तिथि है, और साथ साथ में है श्रीनिवास आचार्य, गौर पार्षद में आते हैं ये श्रीनिवास आचार्य, बहुत महान आचार्य हुए, उनका भी आज आविर्भाव तिथि है। और माधवेंद्र परमेश्वरदास ठाकुर का आज तिरुभाव तिथि है, हैं परमेश्वरदास ठाकुर कम लोग जानते होंगे। परमेश्वरदास ठाकुर ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, और इन्होंने जाह्नवी देवी का भी सेवा किया। विशेषकर जब वृंदावन में राधा गोविंद देव जो विग्रह है तो ये जब प्रकट हुआ था, आज ही हम चर्चा कर रहे थे हर्ष गोविंद प्रभु के साथ, ये जो राधा गोविंद देव हैं ये प्रकट हुए थे तो गोविंद देवी थे, राधा जी साथ में नहीं थी, लेकिन जाह्नवी देवी ने बंगाल से श्री राधा के विग्रह को गोविंद देव जी के पास रखने के लिए भेजा था, तो उस विग्रह को लेकर जब आए थे तो ये परसोत्तम दास ठाकुर साथ में आए थे वृंदावन में, ये उनकी प्रमुख लीला है। तो ये जाह्नवी माता के भी उन्होंने बहुत सेवा की, और विशेषकर नित्यानंद प्रभु के ये पार्षद हैं, उनके भक्त हैं। और ये कृष्ण लीला में द्वादश जो गोपाल हैं उसमें ये अर्जुन हैं, परसोत्तम दास ठाकुर, ये देखिए कितने महान महान आचार्य हैं। इसके बाद माधवेंद्रपुरी पाद के बाद बारे में तो आप सब बहुत सुने हैं, हैं माधवेंद्रपुरी पाद विशेषकर ये माधुर्य उज्ज्वल रस के आचार्य हुए, प्रथम आचार्य हुए हैं। हे दीन दयाद्र नाथ, हे मथुरा नाथ, इस प्रकार कृष्ण को पुकार पुकार कर अंत समय में बहुत विरह भाव में ये रोए रोते थे माधवेंद्रपुरी पार। ये जो है दीन दयाद्र नाथ मथुरा नाथ, ये राधा जी के द्वारा उच्चारित श्लोक है। जब भगवान मथुरा चले गए थे उसके बाद राधा जी कृष्ण के विरह में इस श्लोक का उच्चारण की, उसी का उच्चारण माधवेंद्रपुरी पाद किया करते थे, माधुर्य रस में थे। इन माधवेंद्रपुरी और ये जो हम उत्सव मना रहे हैं चंदन यात्रा, ये माधवेंद्रपुरी पाद का ही लीला है। ये आप लीला श्रवण कर चुके हैं दो रविवार से, तो माधवेंद्रपुरी पाद के बाद आज राधा रमण देव जो वृंदावन के प्रमुख विग्रहों में एक है, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा सेवित विग्रह है। पहले ये शालिग्राम शिला में थे, शालिग्राम थे। प्रतिवर्ष कई दिल्ली के और आसपास के बड़े बड़े धनी लोग वृंदावन में अपनी सेवाएं देते थे और भगवान के श्रृंगार के लिए कई आभूषण, कई वस्त्र प्रदान किया करते थे, बांसुरी, मुकुट, हार इस प्रकार प्रदान किया करते थे बड़े बड़े सेठ लोग। पहले जो भी सेठ होते थे पहले भगवान की सेवा पहला उनका कर्तव्य है। आजकल के जो सेठ होते हैं वो ज्यादा इसमें रुचि नहीं रखते हैं। बहुत बहुत सेठ हैं आज भी, अभी हमने सुना विश्वात्मा प्रभु बता रहे थे कि एक सेठ ने तिरुपति बालाजी में 100 किलो सोना डाल दिया। आज भी ऐसे सेठ हैं, ये इतिहास परंपरा। तो सेठ आते थे और देते थे तो सभी जो विग्रह हैं उनका श्रृंगार किया जाता था। लेकिन ये गोपाल भट्ट गोस्वामी मन में विचार किया करते थे कि मेरे तो ये शालिग्राम है, कैसे मैं उनको मुकुट पहनाऊं, कैसे हार पहनाऊं, कैसे उनको बांसुरी हाथ में दूं। अगर मेरे भाई ऐसा विग्रह होता तो मैं भी उनका श्रृंगार करता, ऐसी अभिलाषा करके वो सो गए। प्रातः मंगला आरती के समय में उठे तो उनका वो शालिग्राम जो था वो रमण देव के रूप में, विग्रह के रूप में जो आज हम दर्शन करते हैं वो हो गया। वो प्रकट्य दिन आज है, आज का दिन बहुत पवित्र है। आज पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है, इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आज भगवान बुद्ध का भी जन्मदिन है इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, और इतने आचार्यों का जन्मदिन है। तो इस प्रकार राधा रमण देव का प्रागट्य हुआ आज के दिन। इसके साथ साथ श्रीनिवास आचार्य, इसे सभी हम हमारे भजनों में भी गाते हैं श्रीनिवास आचार्य का। इनके जो पिताजी थे गंगाधर भट्टाचार्य और इनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया था। ये इनको चैतन्य दास भी बाद में नाम पड़ा इनका, चैतन्य दास गंगाधर भट्टाचार्य का। विशेषकर जब गौर सुंदर ने सन्यास लिया कटवा में केशव भारती के पास, तो यह लीला देखने के लिए ये गए थे वहां पर गंगाधर भट्टाचार्य। जब ये गए थे तब चैतन्य महाप्रभु के केश कर्तन हो चुका था, तो उन्होंने पहले भी चैतन्य महाप्रभु को देखा था, लेकिन जब उसमें देखा कि उनके चिकने और काले काले घुंघराले बाल नहीं हैं, तो इस रूप में देखकर वो बहुत दुखी हो गए और इतने दुखी हुए रोने लगे और रोते रोते मूर्छित होकर गिर गए ये गंगाधर पंडित। फिर कई भक्तों ने मिलकर उनको होश में लाया, उठाया, लेकिन फिर वो चैतन्य 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 श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य इस प्रकार करते करते पागल जैसे होकर चैतन्य महाप्रभु के विरह में और दुख में बहुत अपने गांव गए। लेकिन इसी प्रकार का श्री कृष्ण चैतन्य श्री ऐसा कहा करते थे, इसलिए फिर उनका नाम चैतन्य दास हो गया। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए तो ये गोर वीरों में बहुत दुखी रहते थे। तो एक बार लक्ष्मी प्रिया और ये गंगाधर दोनों चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए पुरी गए और पुरी जाकर चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया, प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए दोनों ने। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जाइए पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करके आइए, आदेश दिया। तब चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। जब वो दर्शन के लिए गए तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने सचिव गोविंद से कहा कि गोविंद, ये लक्ष्मी प्रिया और गंगाधर ये दोनों पुत्र की वांछा कर रहे हैं, ये पुत्र चाहते हैं, इनकी कामना है कि हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो इनके एक पुत्र होगा, जगन्नाथ जी इनको पुत्र देंगे, और इनके पुत्र का नाम श्रीनिवास होगा। जन्म के पहले चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया श्रीनिवास होगा। और रूप सनातन के द्वारा मैं ग्रंथों का रचना करवाऊंगा, लेकिन इस श्रीनिवास के द्वारा मैं इसका प्रचार करवाऊंगा, वितरण करवाऊंगा। इस प्रकार जन्म से पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य का भविष्यवाणी किया। इससे ही हम समझ सकते हैं कि श्रीनिवास आचार्य कितने महान भक्त हैं, कितने महान महान हमारे आचार्य हुए, जिनमें दीक्षित होने का हमको एक गर्व होना चाहिए। ऐसे आचार्य हैं जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, उनका भी प्रागट्य से पहले चैतन्य महाप्रभु ने उनका वर्णन किया था, नाम भी लिया था। इसी प्रकार श्रीनिवास आचार्य के प्रकट होने के पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितने महान आचार्य हैं, और जिनकी कृपा के द्वारा ही हम लोग यह कुछ भक्ति में पापा पगली करते हैं, ये उनकी कृपा है कि हम लोग भजन कर रहे हैं। ये जो हमको भक्ति या जो हमको ये भक्ति मिला है, ये बहुत ऊंचा कक्षा ऊंचा रस हमको प्रदान हुआ है, उज्ज्वल रस। इसका अधिकार हमारा है नहीं, इसके योग्य हम नहीं हैं, लेकिन हम कैसे कर पा रहे हैं? इन आचार्यों की तपस्या और इन आचार्यों का कृपा है कि हम लोग इस पथ में टिके हुए हैं। तो हम सभी इन आचार्यों के ऋणी हैं, इन आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए आज के दिन कि वे हमारे पर ऐसी कृपा करें कि हम भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सकें, कृष्ण की सेवा कर सकें, और ये उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। कभी भी हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं किसी बलबूते पर यह कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो इसमें एक ही कारण है कि इन वैष्णवों की कृपा ही कारण हो सकती है, या हम जो भक्ति कर रहे हैं तो इन वैष्णवों का कृपा ही कारण है। इसलिए कभी भी हमको कृतार्थ नहीं होना चाहिए, वैष्णवों का हमेशा ऋणी अपने आप को समझना चाहिए कि इन वैष्णवों का, वर्तमान आचार्यों का, वर्तमान वैष्णव गण के हम ऋणी हैं, और हमारे पूर्ववर्त आचार्यों के भी हम ऋणी हैं कि इनकी कृपा से ही हम ये कृष्ण सेवा में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो इन आचार्यों के चरणों में हम बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं नतमस्तक होकर कि वे इस प्रकार हमारे पर कृपा करते रहे कि हम भी चैतन्य महाप्रभु की इस आंदोलन में कुछ सेवा कर सकें। हरे कृष्ण। श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का की, माधवेंद्र पुरीपाद की, राधा रमण देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, परसोत्तम दास पुरी ठाकुर की, सब वेद भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, निताय गौर हरिप्रमाण। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का ये सुंदर श्रीमद् भागवतम सत्र इस ग्रीष्म लोकाध्यक्ष प्रभु के मुखार से श्रवण किए हैं। हम आभार प्रकट करेंगे कि वो बहुत इसी प्रकार से हमें अमृत प्रदान करते रहें। तो आभार प्रकट करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब जानते हैं कि मंदिर से